Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. आज हम श्रीमद् भगवद् गीता के चौथे अध्याय पाठ करेंगे. तो पहले हम भगवद् गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य पाठ करते हैं. मतलब गीता पाठ करने से क्या फायदा होता है, अर्थात भगवद् गीता का चौथा अध्याय पाठ करने से क्या होता है, इसका वर्णन यहां हुआ है. श्री भगवान कहते हैं, प्रिय मतलब शिव जी कहते हैं, पार्वती को कह रहे हैं, अब मैं चौथे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूं, सुनो. भागीरथी के तट पर वाराणसी के नाम की एक पुरी है. वहां विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर हो आदरपूर्वक गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते थे. उसके अभ्यास से उनका अंतकरण निर्मल हो गया था. वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से कभी व्यथित नहीं होते थे. एक समय की बात है, वे तपोधन नगरी के सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा में भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल आए. वहां बेर के दो वृक्ष थे, उन्हीं के जड़ में वे विश्राम करने लगी. एक वृक्ष की जड़ में उन्हें अपना मस्तक रखा था और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका एक पैर टिका हुआ था. थोड़े देर बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5 ही 6 दिनों के भीतर सूख गए. उनमें पत्ते और डालियां भी नहीं रह गई. तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मणों के पवित्र गृह में दो कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए. वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गई, तब एक दिन उन्होंने दूर देशों से घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा. उन्होंने देखते ही वे दोनों उनके चरणों में पड़ गई और मीठी वाणी में बोली, मुने, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है. हमने बेर की जोनी त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है. उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ. उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधना से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही ये भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष होने का कारण क्या था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है. तब वे कन्याएं पहले उन्हें अपने बेर हो जाने का कारण बतलाती हुई बोली, मुने, गोदावरी नदी के तट पर छिन्नपाप नामक एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्य को पुण्य प्रदान करने वाला है. वो पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है. उस तीर्थ में सत्य तपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे. वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते थे. वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक को बाल सदा भीगे ही रहते थे, तथा जाड़े के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे. वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते, समय पर तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों को संयमों में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमन करते थे. वे अपनी विद्वत्ता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकट नहीं रहा गया था, अतः उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्य तपा की जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपने समृद्धिशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में 100 करोड़ विघ्न डालने आरंभ किया। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। इंद्र का ये आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर, जहां वे मुनि तपस्या करते थे, आई। वहां मंद एवं गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग तथा मधुर बेनुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गान आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन जोगी महात्मा की वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगी। बीच बीच में जरा जरा सा अंचल खिसकने पर उन्होंने हमारी छाती भी देख जाती थी। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोधपूर्वक शाप दिया, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। ये सुनकर हम लोगों ने बड़े विनय के साथ कहा, महात्मन, हम दोनों पराधीन थी, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा करें। ये कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शापोद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक ही तुम पर ये शाप लागू होगा, उसके बाद तुम लोगों का मर्त्य लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। मुने, जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उस समय अपने हमारे समीप आकर गीता के 4th अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था, अतः हम आपको प्रणाम करती हूं। आपने केवल शाप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के 4th अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया। शिव जी ने कहते हैं, इन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए, तथा वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के 4th अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। श्रीमद् भगवद गीता महात्म की जय। बांग्ला बीटे बड़ो बीटे कल के जेटा छिल एखने ओटा कोथे ओइते
चतुर्थ अध्याय ज्ञान योग।
श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमप्ययम् विवस्वान् मनवे प्राहु मनोरिक्षको एवं परंपरा प्राप्तं इमं राजसयोगी सकाले नेह महता योगनष्ट परंतपं सैवायं मया तेभ्यः योग प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा ज्योति रहस्यं हे तदुत्तमम् अर्जुनाय उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीय तमादो प्रोक्तवान् श्रीभगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चारण त्यान्याहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतेषामधिष्ठाय सम्भवामि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनाय सम्भवामि जन्म कर्म च मे नित्यम् एवं यमिति तत्ततः तत्तदेहं पुनर्जन्म नैति मामेति वीतराग भयक्रोधा मन्मया माम पाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता भावमागता हे यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम पद्मानुवर्तन्ते मनुष्या शांशन्त कर्मणां सिद्धि जजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्णं मया शिष्टं गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारमपि मां विद्याकर्तारमप्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म स्वदेष्टिः इति मां ज्योति जानामि कर्मभिः समर्थते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुष्यति कुरु कर्मैव तस्मात्यं पूर्वैपूर्वतरम् कर्म किं कर्तव्येति कवयोगि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यस्य त्वमुष्येषुना कर्मण्येहोऽपि बोद्धव्यं बोद्धत्वं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्म कर्म ज पश्ये अकर्मणि च कर्मज सबुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्म यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्णिता ज्ञानाग्निः
सप्त कर्मणां तमाहं पण्डिताभिधा तक्ता कर्म फलासङ्गं वित्ततृप्तनिराश्रयः कर्मण्यमे प्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोमि सः निराशीर्णे जतचित्तात्मा तक्त्या सर्वपरिग्रहा शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति यदृच्छा लाभसन्तुष्ट दण्डातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि नानुबध्नते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः जगायाचरतो कर्म समग्रं प्रवीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवी ब्रह्माग्नौ ब्रह्मनामकं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेव परिचर्यं योगिना परिपाशते ब्रह्माग्नाव परिचर्यं यज्ञेनैवोपजीवते श्रोत्रादीन्द्रियाणि संयमादुषु भवति शब्दादीनि विषयान्यन्द्रियादिषु भवति सर्वानिन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगार्थं जुहति केनति ब्रह्मयज्ञास्तपो यज्ञ ज्ञानयज्ञास्तथा परि साधाय ज्ञानयज्ञश्च यतय संक्षिप्तम् अपाने शुभति प्राणं प्राणे पानं तथा परि जगाशिष्टं मृतभूजं जान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकस्य यज्ञस्य एवं बहुविधा यज्ञं वीतता ब्रह्मलोके कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा श्रेयान् ब्रह्ममयाज्ञा ज्ञानाज्ञ परं तप सर्वं कर्म इदं पार्थ ज्ञानपरिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्ते ज्ञानं ज्ञानस्तत्त्वदर्शिनः जज्ञत्वानां पुनर्मोहम् एवं जास्यति पाण्डवः येन भूतान्नशेषेण रक्षस्यात्मन्नतो मयि अपि चेदर्षि पापेभ्यः सर्वेभ्यो पापपीडितमः सर्वं ग्लानं तवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांशि समित्तं भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्ध्य कालेनात्मनि श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परो संयतेन्द्रियं ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिपते श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकविनाशः न सुखं संशयात्मनः योगसन्नष्टकर्माणां ज्ञानसंच्छिन्नसंशयम् अन्तवन्तमानि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्माद् ज्ञानसम्भूतम् रिष्टं ज्ञानात्मनः चिन्तैनं संशयं लोकम् आतिष्ठ विश्वाय ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
चतुर्थ अध्याय का अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवशान को दिया और विवशान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः ये विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। आज मेरे द्वारा वही ये प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्यों के समझ सकते हो। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवशवान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परमतप, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म का प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों को विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप में उन्हें फल हो देता हूं। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। प्रकृति के तीन गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम ये जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूं। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वो भी कर्मों के फल के पास में नहीं बढ़ता, कर्म के पास में नहीं बढ़ता। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्म क्या है और अकर्म क्या है इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वो ये ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वो सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है, उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं। जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्मफलों की भस्मसात किया है। अपने कर्मफलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वो सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपने संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वो पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वो कर्म करता हुआ भी कभी बांधता नहीं। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनाशक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावना मृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हबी भी आध्यात्मिक होती है। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञ द्वारा देवताओं को भली भांति पूजा करते हैं और कृष्ण परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग जो गृहस्थ हैं इंद्रिय विषयों को इंद्रियों के अग्नि में अर्पण कर देते हैं। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रिय तथा प्राण वायु के कार्य को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों को अध्ययन द्वारा प्रवृद्ध बनते हैं। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं प्राणायाम। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भजन करके प्राण में ही आहुति देते हैं। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्म से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। मतलब आध्यात्मिक जगत की ओर बढ़ते जाते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ हैं। हे पार्थ, अंततो गोता स्वारे कर्म योगों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनित होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। यदि तुम समस्त पापियों में से भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगी। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के फल स्वरूप भौतिक कर्मों के समस्त फलों के जला डालती है। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वो यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वो इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वो तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्र में संदेह करते हैं वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। जो व्यक्ति अपने कर्मफलों का परित्यग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं होते हैं वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, ये कर्मों के बंधन से नहीं बांधता, वो कर्मों के बंधन से नहीं बांटता। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शास्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। तो यहां दिव्य ज्ञान का मतलब क्या हुआ, किसको पता चला? ये पाठ से कुछ समझने में दिक्कत होता है, असुविधा हो रहा है पाठ में समझने में? नहीं? ओके। और यहां भी पाठ, ये गीता हम जो पढ़ रहे हैं अनुवाद, समझने में असुविधा हो रहा है? नहीं हो रहा है? अच्छा, तो समझे हो सब? क्या समझे हो हमें बताओ। मैं पूछा इस अध्याय में किस विषय का चर्चा हुआ है? हाँ, किस विषय का? नहीं, इस विषय, इस, मैं तीन बार पाठ किया, इस अध्याय में किस विषय का पाठ हुआ है? इस अध्याय का नाम क्या है? हाँ, किसको पता है? हाथ उठा जिसको पता है। इस यस राघव पंडित। हाँ, इस अध्याय का यह है दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। पांचवा अध्याय में ज्ञान या कर्म योग है, और तो दिव्य ज्ञान का मतलब क्या है? यहां जो भगवान योग, कर्म योग और ज्ञान, इस अध्याय में इस तीन विषय में भगवान चर्चा किए है ना? हाँ, भगवान पहले क्या बताया इस अध्याय का शुरू में? भगवान क्या बताया कि इस ज्ञान भगवान सूर्य देव को प्रदान किए थे। तो अर्जुन ने पूछा, कृष्ण सूर्यदेव तो कितने पहले आए थे, तो तुम कैसे कह सकते हो कि इस ज्ञान तुम सूर्यदेव को दिए हो? सूर्यदेव तो हजारों करोड़ों साल पहले आए, तो उनको तुम कैसे दिए हो? तब भगवान क्या बताया? भगवान बताया, देखो अर्जुन, बहुत बहुत बार तुम्हारा भी जन्म हुआ और मेरा भी जन्म, बल्कि उस जन्म के, पूर्व जन्म के बारे में तुमको कुछ याद नहीं, परंतु मेरा पूर्ण रूप से हर जन्म के बारे में याद है। तो इसके पश्चात भगवान कह रहे हैं कि मैं अजय हूं, मेरा जन्म नहीं होता, परंतु मेरा अंतरंगा शक्ति योगमाया के प्रभाव से मैं जन्म लेता हूं, लगता हुए है कि मेरा जन्म हुआ है, बल्कि अजो ओपिशन अव्यय आत्मा, यद्यपि मैं अजय हूं, जन्म रहित हूं, मेरा कभी जन्म नहीं होता है। शुरू से भी भगवान का जन्म नहीं हुआ, जन्म तो शुरू से होता है, तो शुरू में भी भगवान का जन्म नहीं, भगवान अनादि है। तो यद्यपि मैं अजय हूं, अजन्मा हूं और अव्यय हूं, मेरा कुछ नुकसान नहीं होता है, क्षय नहीं होता है, व्यय नहीं होता है। हम लोगों का व्यय होता है ना, बचपन से शरीर बड़ा होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसका विनाश हो जाता है, बल्कि भगवान का ऐसा नहीं होता है। भगवान अव्यय है। यद्यपि मैं अजय हूं, अव्यय हूं, अजोपिशन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपिशन, यद्यपि मैं सारे संसारों के ईश्वर हूं, मालिक हूं, फिर भी प्रकृति शाम अधिष्ठाय संभवामी आत्ममाया, मेरा प्रकृति, मेरा अंतरंग प्रकृति के, मतलब मेरा योगमाया के प्रभाव से मैं आविर्भूत होता हूं, संभवामी, मैं प्रकट होता हूं, प्रकाशमान प्रकाश होता हूं। तो इसके पश्चात भगवान अर्जुन को समझाया, देखो जो व्यक्ति समझ लेता है कि मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है, उसको इस जन्म के बाद और फिर जन्म नहीं लेना पड़ता है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जवेत्ति तत्वतः त्वक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्गम। तो इसके पश्चात भगवान बताया क्यों भगवान आते हैं, भगवान इस भौतिक जगत में क्यों आते हैं। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म का ग्लानी होता है और अधर्म का अभ्युत्थान होता है तब धर्म को संस्थापन करने के लिए, पुनर्स्थापन करने के लिए भगवान आते हैं। आकर भगवान क्या करते हैं, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृतम्। पर साधुओं को परित्राण करते हैं और जो दुष्ट हैं, जो उनको जो दुष्कर्मकारी हैं, जो भगवान को नहीं मानता है, जो नास्तिक है, जो भगवान के प्रति विद्वेष भाव रखता है, उसको भगवान विनाश करते हैं। इसलिए भगवान आते हैं, नहीं तो यहां भगवान को आने का कोई भी जरूरत नहीं था। हाँ, इसके पश्चात भगवान बताया हाँ कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जवेत्ति तत्वतः। जो जान लेता है कि मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है, मैं आता हूं, मैं साधारण मनुष्य नहीं हूं, हाँ मैं हर स्थिति में मैं भगवान हूं, है ना। भगवान बचपन में, भगवान का जन्म के हाँ 7 दिन के बाद पुतना आई थी भगवान को मारने के लिए, क्या हुआ। 7 दिन के एक बच्चा को मारना क्या कठिन है, नहीं। विशेष रूप से पुतना जैसे एक राक्षसी के लिए, जो शिशुओं को मारने में बहुत एक्सपर्ट था, शी मास्टर द आर्ट ऑफ किलिंग चिल्ड्रन, ये था पुतना। और भगवान 7 दिन के बच्चे होते हुए भी पुतना को मार डाला। इसके पश्चात एक के बाद एक भगवान त्रिनावर्तासुर, सटकासुर, अघासुर, बकासुर को एक एक करके सारे को मार डाला बचपन में ही। 7 साल की उम्र में भगवान गोवर्धन को धारण किया, तो ये कोई मामूली इंसान का कार्य है। तो अर्थात भगवान हर स्थिति में भगवान ही रहते हैं, चाहे वो 7 साल के हो या 7 दिन के हो। तो ये जो अर्थात भगवान का जन्म और कर्म जो दिव्य है, ये जो सही रूप से समझ लेता है, उसको इस जन्म के पश्चात, इस जीवन के पश्चात और पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता है उसको, और फिर यहां वापस नहीं आना पड़ता है। और इसके बाद भगवान बोला कि ये जो पंथा जो है, बीत रागो भय क्रोधा मनमया माम उपश्रिता बहुव ज्ञान तपसा कूता मदभावं आगता। पूर्व में भी बहुत सारे महात्माओं ने इस भौतिक जगत के प्रति आसक्ति रहित होकर, भय और क्रोध से मुक्त होकर मेरे शरण में आकर, अर्थात भगवान के शरण में आने से क्रोध, भय और राग, मतलब भौतिक जगत के प्रति आसक्ति नष्ट हो जाता है। बीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपश्रिता बहुव ज्ञान तपसा, बहुत ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होकर बहुत साधुओं ने मदभाव मागत मेरे पास वापस आ गया। अर्थात जो भी भगवान को शरण लेते हैं वही आसानी से भगवान के पास वापस आ सकते हैं। अच्छा, ये कहते हैं, फिर भगवान कहते हैं कि फिर भी मनुष्य लोग क्या चाहते हैं, वो कर्म का सिद्धि चाहते हैं, मतलब इस भौतिक जगत में जो काम, उसका जो वासना है, उसको वासना का पूर्ण करना चाहते हैं। करने के लिए वो क्या करता है, देव देवियों का पूजा करता है, ये भौतिक प्राप्ति के लिए देव देवी का पूजा करते हैं। कांक्षंत कर्मणां सिद्धि जजंत इह देवता क्षिप्रं ही मनुष्य लोके सिद्धि भवति कर्मचा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं। सकाम कर्मों में सिद्धि मतलब काम करके उसका फल प्राप्त होना चाहते हैं, और इसलिए फलस्वरूप उन्होंने क्या करते हैं, देवताओं का पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है, भगवान कहते हैं जो मूर्ख है अर्थात जो इस भौतिक जगत को भोग करना चाहते हैं वही केवल देव देवियों का पूजा करता है, और जो सही रूप से जिसको ज्ञानवान, जो अगर ज्ञानवान है तो भगवान का शरण लेके अपना जीवन सफल करता है, देव देवियों की पूजा करने का कोई जरूरत नहीं। इसके पश्चात भगवान कह रहे हैं कि गुण और कर्म के अनुसार उन्होंने चार वर्ण का चातुर्वर्णंग माया सृष्ट गुण कर्म विभाग, चार वर्णों का सृष्टि की। तस्य कर्तारम अपि मान विद्धि अकर्तारम अव्ययम्। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं किंतु तुम ये जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता है। भगवान इसके बाद कहते हैं कि कोई भी कर्म हमें प्रभावित नहीं करते, कोई भी कर्म के द्वारा मैं प्रभावित नहीं होता, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्मफल की कामना करता। जो मेरे संबंध में इस सत्व को जानता है वो भी कर्मों को फल के पास में नहीं रहता। जो जान लेता है कि भगवान कर्म के प्रभाव के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ना तो भगवान कर्म की फल का आकांक्षा करते हैं, वो भी कर्म फल से मुक्त हो जाता है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभि कुरु कर्मैव तस्मात् तं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। इस तरह एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभि। मुमुक्षु का मतलब क्या है, मुमुक्षु जो मुक्ति के ओ कामना करते हैं, जो मुक्ति चाहता है इस भौतिक जगत से, जो मुक्त होना चाहते हैं। इस तरह पूर्व काल में मुमुक्षु जो मुक्ति का आकांक्षी जो है उन्होंने ऐसे काम करके भौतिक जगत से मुक्त हो गए। समस्त मुक्तात्माओं ने मेरे दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। इसके पश्चात भगवान कहते हैं ये जानना चाहिए कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। किं कर्म किं अकर्मेति कवयोपि अत्र महिता। कर्म क्या है और अकर्म क्या है इसके द्वारा इस विचार में जो कवयो का मतलब ज्ञानवान व्यक्ति, जो ज्ञानी व्यक्ति भी उसके द्वारा मोहित हो जाते क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए, कर्म क्या है अकर्म क्या है, इसको मोहित हो जाते हैं। तत्त्व कर्म इसलिए मैं तुमको कर्म के बारे में बताऊंगा। तत्ते कर्म प्रवक्षामी, प्रवक्षामी मतलब मैं तुमको बताऊंगा। तत्ते कर्म प्रवक्षामी जज ज्ञात्वा जिसे जानकर मोक्ष से अशुभात, तुम अकल्याण से अशुभ से मुक्त हो जाओगे, अज्ञान से मुक्त हो जाओगे। तो इसके बाद भगवान कहते हैं कि कर्म की बारीकियों के समझना अत्यंत कठिन है, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वो ये ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। और इसके बाद भगवान क्या कह रहे हैं, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वो सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सर्व प्रकार को कर्म में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। अच्छा, यहां से शुरू हो रहा है इस अध्याय का असल विषय, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। जो देखता है, जो समझता है, वही सही बुद्धिमान है, और सारे कर्म में प्रवृत्त रहकर भी वो दिव्य स्थिति में रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। जब हम भगवान के लिए कर्म करते हैं तो क्या है? वो कर्म है या अकर्म है? कर्म है, बल्कि वो अकर्म भी है। वो कर्म में अकर्म ही देख रहे हैं और वो अकर्म भी कर्म में हो रहा है। तो कर्म में अकर्म और अकर्म अकर्म में कर्म कब देख सकता है मनुष्य? जब भगवान की सेवा में लग जाते हैं। तो मतलब असल कर्म क्या है? भगवान का सेवा। तो इसके पश्चात भगवान विभिन्न प्रकार के यज्ञ के बारे में बताया। जब भिन्न भिन्न प्रकार, यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ का मतलब क्या है, किसको पता है? यस राघव पंडित, भगवान के, भगवान को प्रसन्नता के लिए जो कर्म है वो है यज्ञ। तो ये होता है अष्टांग योगी वो प्राणायाम करके योग करते हैं, प्राणायाम के पश्चात ध्यान करते हैं। कर्म योगी यज्ञाग्नि में अपना हवन डालते हैं कर्म रूपी। ज्ञान योगी ऐसे सब क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं, मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए ये सारे कार्य करते हैं। अपाने जुभति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्धा प्राणायाम परायण। ये एक प्रकार का यज्ञ है। इसके पश्चात भगवान कह रहे एवं बहुविधा यज्ञा बीतता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमक्षसे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं, और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। ये सारे यज्ञ विभिन्न प्रकार कर्म से ही उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओ। इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओ। इसके पश्चात देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। श्रेयाद श्रेयान द्रव्य माया यज्ञाद ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परी समाप्त। समझे? अच्छा, इसका अर्थ क्या हुआ है? श्रेयान मतलब श्रेष्ठ। कौन? द्रव्यमयान यज्ञान, श्रेयान द्रव्यमयान यज्ञान ज्ञान यज्ञ परंतप। अर्थात द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य देखे, वस्तु देखे जो यज्ञ होता है उससे श्रेष्ठ है ज्ञान के द्वारा जो यज्ञ हो रहा है। अंततोगतः सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। सारे जो कर्म योग है, यज्ञ है, कर्म के द्वारा जो यज्ञ हो रहा है उसका अवसान कहां होता है, उसका समाप्ति कहां होता है? ज्ञान यज्ञ। अच्छा, तब ये ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकते हैं? ज्ञान यज्ञ में यज्ञों का समाप्ति होता है, तो ज्ञान कैसे प्राप्ति होगा? इसके बारे में भगवान कह रहे हैं ज्ञान प्राप्ति के उपाय क्या है, किसको पता है? अच्छा, यहां ओके, तुम बताओ, थोड़ा जोर से बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। तद्विद्धि प्रतिपातेना, ज्ञान प्राप्ति के उपाय क्या है? विद्धि क्या है? तद्विद्धि जान लो, उसका उपाय क्या है? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शन। तुम गुरु के पास जाकर सत्यों को जानने का प्रयास करो, उनसे विनित होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्यों को दर्शन। तो ज्ञान प्राप्ति के उपाय क्या है? सदगुरु के पास जाकर उनके पास उनके शरण में सही शिक्षा प्राप्त होकर ये ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। और ये ज्ञान प्राप्त होने से क्या होता है? जज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं जास्यसि पांडव जेन भूतान शेषेण द्रक्ष शात्मन नथो मई। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अतएव सब मेरे हैं। तो इसके पश्चात भगवान एक बहुत बड़े आश्वासन दे रहे हैं। देखिए ये कितना सुंदर आश्वासन। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्यो पापकृतम। अगर या यदि तुम समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी हो, अगर तुम समस्त पापियों से भी सर्वाधिक पापी हो, सर्वे ज्ञानोप्लवे नैव ब्रीजिनं संतरिष्यति। इस ज्ञान रूप नाम अगर तुम प्राप्त हो जाओगे तो तुम ये समुद्रों को पार हो जाओगे, आसानी से तुम मुक्त हो जाओ। मतलब जितना सारे पाप हुआ है, चाहे तुम कितना भी पापी हो, सारे पापों से तुम मुक्त हो जाओ। कितना सुंदर आश्वासन है। पाप तो थोड़ा बहुत सबको ही है ना, पता नहीं है कितना पाप हम कर चुके हैं, ज्ञानतः और अज्ञानतः कितना पाप करते। बल्कि अगर हम इस ज्ञान को प्राप्त हो जाए, इसका इसलिए इस प्रश्न में किया था। ज्ञान का मतलब क्या है यहां? ये जो ज्ञान योग का मतलब दिव्य ज्ञान का जो अध्ययन हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? दिव्य ज्ञान क्या है? परमेश्वर भगवान है श्री कृष्ण और उनको शरण लेना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है ना। अर्थात जो ये समझ लिया, भगवान ही श्री कृष्ण ही परमेश्वर भगवान है और उनको शरण लेना ही हमारा परम कर्तव्य है, तब हम यद्यपि मैं हो सकता हूं कि मैं सारे पापियों में से श्रेष्ठ पापी हूं, मैं सारे पापों से मुक्त हूं। कितना सुंदर आश्वासन है। कैसे होगा? यथिधांशी समिद्धग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तत्। जैसे आग समित को जला देते हैं, खाक कर देते हैं ना, भस्मसात कुरुते, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि सारे कर्म को भस्मसात कर। फिर से ज्ञान क्या है? भगवान को समझना। ज्ञान का मतलब है समझना। किसको समझना? भगवान को समझना और मेरा स्थिति उनके अनुसार मेरा स्थिति को पहचान। बस ये है असल। इसके बाद पश्चात भगवान क्या कह रहे हैं? ज्ञान प्राप्त हो कौन हो सकता है? कौन ज्ञान प्राप्त हो सकता है? ज्ञान प्राप्ति का पात्रता क्या है? ओके, नम्रता बनाओ। Very good. Very good. Shraddhavan lavate jnanam tatpara sangyatendriya. Aur unka shraddhavan shraddha ke saath saath aur kya zarurat hai? Kya yagyata ka zarurat hai? Pat sangyate indriya. Jnanam labdha param shantim achirena adhigachyati. Us jnan ko prapt hai hokar achirena shikra ki prapt ho jaye. और जो जिसको श्रद्धा नहीं है उसको क्या होगा? अश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति अज्ञश्च अज्ञश्च अश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोके अस्ति. ना तो इस लोक में, इस भौतिक जगत में, ना तो परलोक में उसका ना तो शांति होगा ना तो सुख मिलेगा. बहुत अच्छा. थैंक यू. हरे कृष्ण. गौर प्रेमानंदे.